नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 23 अप्रैल 2021 के साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, भारत में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमणों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताई गहरी चिंता। कहा, इस खतरनाक वायरस से निपटने के लिए हर स्वास्थ्य औजार का करना होगा इस्तेमाल। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया रसातल के कगार पर, प्रकृति के साथ समरसतापूर्ण संबंध सुनिश्चित करने की पुकार। जलवायु कार्रवाई के दौरान प्रकृति आधारित समाधान अपनाए जाने अहम, मगर आदिवासी समुदायों के हितों का भी रखा जाना होगा ध्यान। सुनिए गए खास बातचीत जलवायु परिवर्तन पर यूएन महासचिव के युवा सलाहकारों के समूह में शामिल भारतीय कार्यकर्ता अर्चना सोरिंग से। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। विश्व भर में कोविड-19 संक्रमण के 14 करोड़ 43 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत फिलहाल सर्वाधिक प्रभावित देशों में है, जहां हाल के दिनों में संक्रमणों में भारी तेजी आई है। देश में 24 घंटों में 3,32,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, 2,200 से अधिक लोगों की मौत हुई है। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने शुक्रवार को भारत में संक्रमणों के बढ़ते मामलों और मौतों पर गहरी चिंता जताई है।
We are deeply concerned about their increasing number of cases and deaths in India right now. We know that the situation is complex and requires different responses.
भारत में हालात पर चिंता जताते हुए महानिदेशक गेब्रियसिस कह रहे थे कि हालात जटिल हैं, जिनसे निपटने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न कार्रवाई की जरूरत होगी। यूएन एजेंसी प्रमुख ने सामाजिक गतिविधियों को कम करने और वैक्सीन उत्पादन को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत किया है। महानिदेशक गेब्रियसिस ने भरोसा दिलाया है कि यूएन स्वास्थ्य एजेंसी और उसके साझेदार संगठन सरकार और देश की जनता के साथ खड़े हैं और लोगों की जिंदगियों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने पोलियो, टीबी और अन्य टीकाकरण अभियानों से जुड़े 2,500 से ज्यादा कर्मचारियों की फिर से तैनाती की है, ताकि राज्यों को जरूरी मदद प्रदान की जा सके। साथ ही ऑक्सीजन के उत्पादन, संयंत्रों की देखरेख और अन्य प्रकार की तकनीकी मदद भी मुहैया कराई जा रही है। महानिदेशक गेब्रियसिस,
The situation in India is a devastating reminder of what this virus can do and why we must marshal every tool against it in a comprehensive and integrated approach.
भारत में मौजूदा हालात भयावह ढंग से आगाह करते हैं कि ये वायरस क्या कुछ कर सकता है और क्यों हमें इससे निपटने के लिए व्यापक और एकीकृत तरीके से हर औजार का इस्तेमाल करना होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, वैक्सीन, रोग निदान और उपचारों का यूएन एजेंसी प्रमुख ने जोर देकर कहा है कि यही परिदृश्य दुनिया भर में दिख रहा है और दिखता रहेगा, अगर जिंदगियों को बचाने के लिए अहम औजारों का न्यायसंगत वितरण नहीं हुआ। इस बीच कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन की 2,50,000 से ज्यादा खुराकों की खेप गुरुवार को सीरिया पहुंची। ये खुराकें न्यायसंगत वैक्सीन वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स पहल के तहत भेजी गई हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की इन खुराकों को भारत के सीरम संस्थान में तैयार किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सीरिया में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, मगर यूएन एजेंसियों ने आशंका जताई है संक्रमितों का वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि 10 वर्षों से युद्ध पीड़ित देश में परीक्षण की फिलहाल समुचित व्यवस्था नहीं है। उधर स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने कोविड-19 वैक्सीन को वितरित करने के लिए 1,00,000 यूरो की रकम दान की है। ग्रेटा थनबर्ग के फाउंडेशन की ओर से ये राशि यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के फाउंडेशन को दी गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया रसातल के कगार पर पहुंच गई है और विश्व नेताओं को तत्काल कार्रवाई करते हुए पृथ्वी को हरित मार्ग पर ले जाना होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को एक वर्चुअल जलवायु शिखर बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही है। इस बैठक का आयोजन अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने किया है। यूएन प्रमुख ने ही 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मां पृथ्वी दिवस के अवसर पर अपने संदेश में आगाह किया था कि पृथ्वी के संसाधनों के लापरवाह दोहन को रोका जाना होगा। उन्होंने ध्यान दिलाया था कि प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किया जाना होगा और जैव विविधता की रक्षा करनी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि पिछला दशक अब तक रिकॉर्ड पर सबसे गर्म साबित हुआ है और दुनिया बढ़ते समुद्री जल स्तर, झुलसा देने वाले तापमान, विनाशकारी चक्रवाती तूफान और जंगलों में आग लगने की विकराल घटनाएं देख रही है। यूएन प्रमुख ने कहा,
मदर नेचर इज नॉट वेटिंग, वी नीड अ ग्रीन प्लैनेट, बट द वर्ल्ड इज ऑन रेड अलर्ट, लीडर्स एवरीवेयर मस्ट टेक एक्शन।
महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि मां प्रकृति अब प्रतीक्षा नहीं कर रही है, हमें एक हरित ग्रह की आवश्यकता है, मगर दुनिया रेड अलर्ट पर है, हम रसातल के कगार पर हैं, हमें अपना अगला कदम सही दिशा में सुनिश्चित करना होगा, हर स्थान पर नेतृत्वकर्ताओं को कार्रवाई करनी होगी, हर देश में, हर शहर, हर बस्ती, हर उद्योग के स्तर पर। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। यूएन प्रमुख ने दो दिवसीय जलवायु वार्ता का आयोजन करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आभार व्यक्त करते हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन मात्रा में कटौती के लिए अमेरिकी संकल्प की सराहना की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने शुरुआती संबोधन में वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन मात्रा में 50% कटौती लाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की जवाबी कार्रवाई से असाधारण स्तर पर रोजगारों व आर्थिक अवसरों का सृजन संभव है। इस क्रम में उन्होंने ऊर्जा, परिवहन, निर्माण व कृषि क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव किए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वीकार किया कि जलवायु आपात हालात का सामना कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता। इसके मद्देनजर विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक टिकाऊ भविष्य की दौड़ में आगे बढ़कर कार्रवाई करनी होगी। महासचिव ने 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मां पृथ्वी दिवस पर अपने संदेश में आगाह किया कि इस वर्ष ये दिवस ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब मानव जाति का प्राकृतिक दुनिया के साथ दुर्व्यवहार जारी है। उन्होंने चिंता जताई कि दुनिया एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच रही है जहां से हालात पहले जैसे कभी नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि इंसान लापरवाही से पृथ्वी के संसाधनों को लूटते हैं, इसके वन्य जीवन को क्षीण करते हैं और वायु, भूमि व समुद्रों के साथ कूड़ा स्थल जैसा बर्ताव करते हैं, ये आत्मघाती है।
गुरुवार को जलवायु शिखर बैठक के दौरान ही भारत की युवा जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग ने प्रकृति आधारित समाधानों पर केंद्रित एक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करते समय आदिवासी समुदायों के हितों का ध्यान रखा जाना होगा। अर्चना सोरेंग जलवायु परिवर्तन पर यूएन महासचिव के युवा सलाहकारों के समूह में शामिल हैं। मैंने अर्चना सोरेंग से बात की और सबसे पहले पूछा कि उन्होंने अपने संबोधन में किन खास बातों का जिक्र किया।
अगर हम चाहते हैं युवाएं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए एडवोकेट करें, तो सबसे पहली बात आती है युवाओं की सुरक्षा के ऊपर, कि जितने भी हमारे युवा हैं सारे विश्व में, हमने पिछले कई सालों में देखा है कि किस तरह से युवाएं ह्यूमन राइट्स वायलेशन का और सिस्टमेटिक रेसिज्म के टारगेट हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम युवाओं को सुरक्षित रखें, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का जो कोर होना चाहिए, शुड बी प्रोटेक्शन ऑफ द यूथ होना चाहिए, और साथ ही साथ किस तरह से हमारे युवाओं की जो नेतृत्व है उसको हम लोग सपोर्ट करें जब हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि मैं एक आदिवासी समुदाय से आती हूँ, मेरे समुदाय के चिंताधारा के हिसाब से हमें ये लगता है कि हम नेचर के पार्ट नहीं है बल्कि हम नेचर हैं। प्रकृति हमारी आइडेंटिटी है, हमारी सोर्स ऑफ लैंग्वेज है, और उसके साथ कल्चर और ट्रेडिशन भी हम प्रकृति से ही पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ या फिर आदिवासी समुदाय हैं, उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस है उसको किस तरह से सपोर्ट किया जाए। और साथ ही साथ जब हम लोग बोलते हैं कि आदिवासी समुदाय को साथ में लेके चलना है, तो बहुत ज़रूरी ये भी होता है कि किस प्रकार हम लोग उनकी सुरक्षा के ऊपर भी बात करें, जब सुरक्षा के ऊपर बात करें तो सबसे पहली बात आता है उनकी जल जंगल जमीन की जो अधिकार है उसको हमें लागू करने की बहुत जरूरी है और ये सब उनके मत के हिसाब से होना चाहिए। तो आदिवासी समुदाय के फ्री प्रायर्ड एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट के थ्रू ही नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को आगे लेके जाना चाहिए।
आदिवासी समुदायों की राय को भी उसमें शामिल किया जाना होगा, खासकर जल जंगल जमीन के विषय में। लेकिन आपकी आशंकाएं इस संबंध में क्या है कि अगर उन्हें शामिल ना किया जाए नीति निर्धारण के समय या योजनाएं तैयार करते समय, तो क्या वो आशंकाएं हैं कि आदिवासी समुदाय किस तरह से प्रभावित हो सकता है?
तो मैंने ये देखा है, एक छोटा सा कहानी या फिर इंस्टेंस मैं बोलना चाहूंगी कि जब मैं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट गई थी उड़ीसा में, तो वहाँ पे सिमलीपाल फॉरेस्ट एरिया पे मैं जब गई थी, वहाँ की जब ट्राइबल लीडर से मैं मिली थी तो वो मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पे लोग प्लांटेशन के लिए आए थे पर हम लोगों ने उनको यहाँ पे प्लांटेशन करने के लिए रोका। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आपने प्लांटेशन करने के लिए यहाँ पे क्यों रोका? तो फिर उन्होंने कहा कि वो लेके आए थे आम का पेड़, पनस का पेड़, ये सारे चीज वो लगाने के लिए लाए थे हमारे जंगल के इर्द गिर्द पे। तो मैंने कहा कि आम का पेड़, पनस का पेड़, ये तो फल पेड़ है, तो इससे क्या समस्या है आपको, आपने क्यों मना किया? तो उन्होंने कहा कि अगर पनस का पेड़ और आम का पेड़ जो कि फलदायी पेड़ है, अगर हमारे जंगल और हमारे घर के इर्द गिर्द में वो लगाएंगे तो जो जितने वाइल्ड एनिमल्स है, चाहे वो बोर हो चाहे वो बंदर हो, तो ये लोग सब वो फल खाने के लिए आएंगे और हमारी जो कृषि के लिए जो भी हमने धान और बाकी सारे सब्जियां उगाई रहेगी हमारे गाँव के इर्द गिर्द, तो वो उसको नष्ट कर देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जगह पे हमारे गांव के एरिया में अगर प्लांटेशन हो तो साल की पेड़ लगे, क्योंकि साल की पेड़ हमारे एरिया के लिए बहुत ही अच्छी है, उपजाऊ है। ये बात कहने की सारांश ये है कि समुदायों को पता है उनके एरिया में कौन सी पेड़ लगाने से वो पेड़ उगेगा और कौन से पेड़ लगाने से वहां की जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो बना रहेगा। लेकिन बहुत बार जब प्लांटेशन ड्राइव्स होती है तो वो इस तरह की मोनो कल्चर प्लांट्स लगाते हैं या फिर इस तरह के प्लांट्स लगाते हैं जो वहां के समुदाय के लोगों को नहीं चाहिए होती है, और वो लेता है एक मेजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज को लीड करता है, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेता है। तो ये सारी चीजें भी हमें समझनी बहुत जरूरी है कि आदिवासी समुदायों का राय लेना, फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना बहुत जरूरी है और उनका लीडरशिप बहुत जरूरी है पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि बहुत बार यही होता है कि पॉलिसी ऊपर से बन के आती है और नीचे लोगों के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है।
ये थी जलवायु परिवर्तन पर यूएन महासचिव के युवा सलाहकारों के समूह में शामिल अर्चना सोरेंग। कोविड-19 महामारी से बेहतर ढंग से उबरने और टिकाऊ विकास व जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये जरूरी है कि महासागरों के प्रति समझ का दायरा बढ़ाया जाए। ये निष्कर्ष है बुधवार को जारी एक नई रिपोर्ट का, जिसमें महासागरों को पृथ्वी की जीवन रक्षक प्रणाली करार दिया गया है। रिपोर्ट दर्शाती है कि मानवीय गतिविधियों के कारण महासागरों को नुकसान पहुंच रहा है। पूरी जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
विश्व महासागर मूल्यांकन का दूसरा संस्करण विश्व भर के सैकड़ों वैज्ञानिकों के सहयोग से तैयार किया गया है। इससे पहले वर्ष 2015 में शुरुआती रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि महासागरों से मिलने वाले अनेक लाभ मानवीय गतिविधियों के कारण कमजोर हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस अवसर पर अपने वीडियो संदेश में मौजूदा हालात को चिंताजनक बताते हुए कहा है कि मानवीय गतिविधियों के दबाव से महासागरों का क्षरण जारी है। मूंगा चट्टानों और खारे पानी में उगने वाले पेड़ या झाड़ियों जैसे अहम पर्यावास तबाह हो रहे हैं। इससे जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने की उनकी क्षमता प्रभावित हो रही है। मानवीय गतिविधियों से ये दबाव भूमि व तटीय इलाकों पर भी आते हैं, जिससे खतरनाक प्रदूषक महासागर तक आते हैं, जिनमें प्लास्टिक कचरा भी है। महासचिव ने बताया कि वातावरण में उत्सर्जित होने वाली कार्बन से महासागरों का तापमान अम्लीकरण बढ़ रहा है, जिससे जैव विविधता को भारी नुकसान हुआ है। समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी दुनिया में तटीय इलाकों को खतरे में डाल रही है। यूएन प्रमुख के मुताबिक महासागरों में मृत जोन की संख्या बढ़ रही है और लगभग दुगनी हो चुकी है। ये वो इलाके हैं जहां ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम है और समुद्री जीवन की संभावना कम है। विश्व भर में यह संख्या वर्ष 2008 में 400 से 2019 में बढ़कर 700 हो चुकी है। विशेषज्ञ इसकी वजह तटों व महासागरों के एकीकृत टिकाऊ प्रबंधन को हासिल करने में इंसानों की मोटे तौर पर विफलता को बताते हैं। महासागरों के प्रति बेहतर समझ बेहद महत्वपूर्ण है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड हत्या मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी को दोषी करार दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। यूएन मानवाधिकार कार्यालय प्रमुख ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि इस मुकदमे का अगर कोई दूसरा फैसला होता तो वो न्याय का उपहास रहा होता। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने अमेरिका और अन्य देशों में मौजूदा पुलिस व्यवस्था पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि व्यवस्थागत नस्लवाद को दूर किया जा सके। एक रिपोर्ट के साथ महबूब खान।
मिनियापोलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी डेविड शॉविन को मई 2020 में 46 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी मूल के व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के आरोप में मंगलवार को दोषी करार दिया गया। घटना के दौरान रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेज दर्शाती है कि श्वेत अमेरिकी पुलिस अधिकारी डेविड शॉविन ने 9 मिनटों से भी ज्यादा समय तक जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर अपना घुटना टिकाए रखा था, जिसके बाद जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद दुनिया भर में नस्लवाद के विरोध में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने अपने वक्तव्य में कहा कि ये एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड के परिजनों और न्याय की मांग करने वाले अन्य लोगों के साहस और धीरज की सराहना की, मगर उन्होंने आगाह भी किया कि अमेरिका और पूरी दुनिया में अफ्रीकी मूल के अनगिनत अन्य पीड़ितों व उनके परिवारों के लिए न्याय की लड़ाई अब भी जारी है। मिशेल बाशेलेट के मुताबिक पुलिस के हाथों मौतें होने और अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने के मामलों में न्याय के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने अमेरिका में पुलिस विभागों में सुधार के लिए मजबूत कदम उठाए जाने की पुकार लगाई। उन्होंने कहा कि पुलिस की हिरासत के दौरान होने वाली मौतों के लिए पुलिस अधिकारियों पर कभी कभार ही आरोप तय किए जाते हैं या फिर उनका दोष साबित होता है। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने अमेरिका और अन्य देशों में मौजूदा पुलिस व्यवस्था पर पूर्ण सरकार व पूर्ण समाज के स्तर पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि व्यवस्थागत नस्लवाद से छुटकारा पाया जा सके।
विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि म्यांमार में मौजूदा राजनीतिक संकट के कारण उत्पन्न हालात में लगभग 20 लाख लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इसके मद्देनजर जरूरतमंदों को पोषण सहायता पहुंचाने के प्रबंध किए जा रहे हैं। यूएन खाद्य एजेंसी के मुताबिक यंगून और उसके आसपास के इलाकों में बहुत से परिवार भुखमरी के हालात में पहुंच गए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि निर्धन लोगों के रोजगार व आमदनी वाले कामकाज खत्म हो गए हैं और उनके लिए पर्याप्त भोजन का इंतजाम कर पाना कठिन है। यूएन खाद्य एजेंसी का इरादा यंगून में 10 निर्धनतम बस्तियों में खाद्य सहायता पहुंचाने का है, जहां बड़ी अनौपचारिक बस्तियां हैं। बाजारों की निगरानी के आंकड़े दर्शाते हैं कि जनवरी के बाद से पूरे देश में चावल भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमतें बढ़ी हैं। ईंधन के दाम भी लगभग 30% तक बढ़ गए हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है कि जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के लिए एजेंसी को 10 करोड़ से ज्यादा की रकम की तत्काल जरूरत है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।